بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا رحمت للعالمین حبیبنا محمد و آلہ الطاہرین. السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ، اور جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں. یہ مشلرہ ہے جو براہ راست سرزمین قم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آج 15 جمادی الاولی ہے اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا موقع ہے. میں اس حوالے سے آپ تمام ناظرین، تمام مؤمنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اتفاق کی بات یہ کہ ہمارا ایک سلسلہ جاری ہے کچھ عرصے سے، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے مجموعے کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہوتی ہے. صحیفہ مبارک سجادیہ ہماری گفتگو کا موضوع رہتا ہے، اور ہر پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ ان دعاؤں میں جو پنہاں اسرار ہیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک منتقل کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو ہم کھوجیں، ان کو تلاش کریں اور ان نکات کو باہر نکالیں اور اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں. پچھلے ایک دو ہفتے سے نہایت خوبصورت دعا ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور آپ کی دعاؤں میں اہم ترین دعا اس کو کہا جا سکتا ہے، دعا مکارم الاخلاق. اس حوالے سے ہماری گفتگو ہے، آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. آج بھی الحمدللہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب حجت الاسلام المسلمین مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ساتھ ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں بھی آپ کی خدمت میں اور محترم ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں.
بہت شکریہ. صحیفہ مبارک سجادیہ کی 20ویں دعا ہماری گفتگو کا موضوع ہے، اور اہم ترین دعاؤں میں اس کا شمار ہے جیسا کہ ہم نے پچھلی بار بھی بتایا، اور نسبتاً طویل سلسلہ اس کا رہے گا گفتگو کا، کیونکہ اہم دعا ہے اور ذرا سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مکارم الاخلاق کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک طرح سے جو اسلامی اخلاق کا مجموعہ ہے اس پر ایک سرسری نظر کریں، اسے آشنا ہونے کی ہم کوشش کرتے ہیں اس دعا میں، اور آہستہ آہستہ ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ وہ مکارم الاخلاق جس کی طرف امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے اس دعا میں، وہ ہے کیا.
جی،
ابھی آپ نے جیسے کہ فرمایا تھا پچھلے پروگرام میں، پہلے پروگرام میں، کہ ایک اچھا اخلاق الگ چیز ہوتی ہے، مکارم الاخلاق ایک بہت ہی بلند و بالا ایک چیز ہے، ایک شے کا نام ہے، اس کی طرف اشارہ ہوا. انشاءاللہ آج ہم کسی ایک حصے سے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اگر مناسب سمجھیں تو، تاکہ آج کے لیے ذہن آمادہ ہو جائے. گزشتہ گفتگو کی طرف ایک سرسری اشارہ، پھر انشاءاللہ آج کی گفتگو.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، السلام علیک یا سید الساجدین وزین العابدین. خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس مبارک دن آج امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم دعا، دعا مکارم الاخلاق کے حوالے سے کچھ باتیں محترم ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا ہے. پچھلے دو پروگراموں میں ہم نے بارہا اس بات کی طرف تاکید کی کہ اگر ہمیں مکارم اخلاق کو سیکھنا ہے اور حاصل کرنا ہے تو صرف ان ہستیوں سے لے سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں کہ جو ان مکارم الاخلاق کا بہترین پیکر ہیں.
یقیناً.
اور بہرحال یہ ایک تاریخ کی ستم ظریفی رہی کہ جب ہمارے ذہن میں کسی امام کا نام آتا ہے تو ہم اس کو زندگی کے کسی خاص پہلو سے لے جا کے جوڑ دیتے ہیں. صحیح. اگر مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آئے گا تو قدرت، طاقت، شجاعت. امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آئے گا، صلح اور
تسلیم ہو جانا،
بے قصو یاور ہونا. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آتا ہے، مظلومیت، شہادت. جبکہ اگر دیکھا جائے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آتا ہے تو عبادت اور بیماری
اور دعا
اور دعا. جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام زین العابدین ہیں، اسی طرح سے اشجع الناس ہیں، اسی طرح سے اعلم الناس ہیں، اسی طرح سے وہ صادق بھی ہیں، باقر بھی ہیں، تمام صفات ہیں. بہرحال ایک ایسی جامع شخصیت کی یہ دعا ہے، تو خصوصاً اس میں مطالب بھی ویسے ہوں گے. ایک دو باتیں جو پچھلے پروگرام میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ امام نے آ کے پہلے تین مرحلے بیان کیے، کہا اگر یہ تین مرحلے صحیح ہوں گے تب تمہارے اندر مکارم الاخلاق के आने की तवक्को की जा सकती है,
मकारिमुल अख्लाक का पौधा तभी लग सकता
तभी
है
लग
जब
सकता है।
आपकी ज़मीन में वो तीन चीज़ें पाई
जी,
जाएं।
आप पत्थर के ऊपर बीज डाल देंगे तो चाहे आप पानी डालिए, बेहतरीन फ़ज़ा हो, उसमें पेड़ नहीं उगने वाला। आपको एक ज़रखेज़ ज़मीन की ज़रूरत है कि जिसके अंदर ये बीज आके बढ़ पाए। वो तीन चीज़ें थी, ईमान, यकीन और नीयत। कि सबसे पहले इमाम अलैहिस्सलाम ने खुदावंद मुताल की बारगाह में इन तीन चीज़ों को रखा, न सिर्फ यकीन बल्कि अकमलुल यकीन को रखा, न सिर्फ नीयत बल्कि बेहतरीन नीयत, अफजल नीयत को रखा, न सिर्फ यकीन बल्कि अफजल यकीन को लाके रखा। क्यों? क्योंकि हमें आम सिफात को हासिल नहीं करना है, हमें आम अख़लाक को हासिल नहीं करना है। ऐन मुमकिन हो इंसान अच्छे अख़लाक का हामिल हो ईमान के ज़रिए, अच्छे अख़लाक का हामिल बन जाए यकीन के ज़रिए से, नीयत के ज़रिए से। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं, एक स्टेप आगे बढ़ें, दुनिया वालों को बताएं कि हकीकी इस्लाम जिस चीज़ की तरफ बुलाता है वो अख़लाक़ हसना नहीं बल्कि मकारिमुल अख़लाक़ है।
मकारिमुल अखलाक है।
और वाकयन देखें, एक शायद ताज्जुब की बात है और एक फितरी चीज़ है, क्या अच्छा अख़लाक़ हर इंसान को नहीं पसंद है?
पसंद है,
पसंद है। अच्छी बातें हर इंसान को नहीं पसंद है?
सब पसंद करते
पसंद
हैं।
करते। तो क्यों ऐसा होता है कि कभी कभी हम किसी के अखलाकी अमल के ऊपर ताज्जुब करते हैं? कभी सोचा है इस मौजू पे?
क्यों ऐसा होता है?
क्यों ऐसा होता है भाई, जबकि तो
मैं
फितरी चीज़ है।
यहीं पर रोकना चाहता हूँ और इसकी वजह क्या है मैं आपसे सुनना चाहूँगा। एक प्रोग्राम का सरनामा देखते हैं इंशाल्लाह, फिर बाकायदा आज की हमारी गुफ्तगू का आगाज़ होता है। मैं एक बार फिर बता दूँ, आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, 20वीं दुआ है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की सहीफ़े मुबारक सज्जादियाँ में, ये हमारी गुफ्तगू का उनवान और मौजू है। आते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। आज जैसे कि बताया, 15 जमादिल उला है। मैं इस मुनासिबत पर तमाम नाज़रीन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का मौका है। माना के फ़लक पर है महो मेहर भी रोशन, लेकिन तेरा नक्शे कफ़े पा और ही कुछ है। दे संगे हरम जिसकी इमामत पे गवाही, इस ज़ात की अजमत बखुदा और ही कुछ है। दिलवा के अज़ां फंस गया खुद शाम का हाकिम, समझा था कि ये होगा, हुआ और ही कुछ है। हलचल है सियासत कदए जुल्मो जफा में, सज्जाद का अंदाज दुआ और ही कुछ है। होता नहीं जो खंजर व शमशीर का मोहताज, उस मर्द मुजाहिद के वगा और ही कुछ है। हमारी गुफ्तगू का उनवान है सईफ़े मुबारक सज्जादिया की 20वीं दुआ, दुआए मकारिमुल अखलाक। हमारा साथ दे रहे हैं जनाब मौलाना अली अब्बास खान साहब क़िबला। एक सवाल आपने उठाया था, एक अहम सवाल है, मैंने आपको रोक दिया था। बिस्मिल्लाह।
जी, सवाल ये उठाया था कि अखलाक इंसान की फितरत के अंदर मौजूद है। हर इंसान बहरहाल समझता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है। फ़अलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा। खुदावंद मुताल ज़ाहिर आयत यही कह रही है कि खुदावंद मुताल ने अच्छी चीज़ों को इंसान की नफ्स के अंदर इल्हाम कर दिया, डाल दिया है। जब इंसान तमाम दुनिया की चीख पुकार से अलग होकर अकेले में बैठ के सोचता है तो समझता है कि वो किधर जा रहा है, क्या अच्छा कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है। शायद किसी के सामने वो इकरार ना करे, लेकिन उसका दिल रात के सन्नाटे में चीख चीख के ये गवाही देता है कि यहाँ तुमने गलती की है, यहाँ तुमने जुल्म किया है। फिर क्या होता है कि जब हम किसी से एक अच्छा काम कभी देखते हैं तो हमें ताज्जुब होता है। हर अच्छे काम पे नहीं, कुछ ख़ास अच्छे कामों में हमें ताज्जुब होता है। जिन अच्छे कामों पे हमें ताज्जुब होता है वो या तो मकारिमुल अखलाक हैं या मकारिमुल अखलाक की शुरुआत है।
सुभान अल्लाह। जैसे कि पिछली बार मुझे याद आ रहा है ऐसा प्रोग्राम में हुआ, आपने एक फ़िक्रे की तलावत की, फ़िक्रे को पढ़ा आपने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के, कि अगर खुदाया तो मुझे लोगों की नज़र में बुलंदी अता करता है, इज्जत अता करता है, शरफ़ अता करता है, लोगों की नज़र में मुझे बाइज्जत बनाता है, मुझे अपने नज़दीक अपनी नज़र में उतना ही हकीर बना दे।
हकीर बनाते
तो ये एक ऐसा जुमला था मेरे लिए कम से कम, कि जब मैंने वाकई पढ़ा तो 3 मरतबा मेरे मुंह से तकबीर निकली।
क्योंकि ये चीज़ें
ये
ऐसी
क्या
हैं,
चीज़ है, ये
ये यानी
कैसे जुमले हैं, कौन सी बातें हैं।
आम इंसान शायद बहुत जल्दी समझना उसके लिए मुश्किल हो। देखें जहाँ से आज शुरू करना चाह रहे हैं, यानी पिछले हफ्ते हम यहाँ तक पहुँचे थे, उसके आगे बहरहाल प्रोग्राम में इतनी फुर्सत नहीं होती कि हम एक एक लफ्ज़ के ऊपर नज़र डालें, जहाँ तक खुदावंद मुताल तौफीक दे। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व मत्तेअनी बिखुदा सालिहिन ला अस्तब्दिलु बिही व तरीक़त हक़्क़िन ला अज़ीग़ु अन्हा। दो चीज़ें खुदावंद मुताल के सामने इमाम यहाँ पर पेश कर रहे हैं। पहली चीज़ कि परवरदिगारा तू मत्तेअनी, मत्तेअनी यानी मुझे, मेरे सामने तू एक हदिया पेश कर, एक मता, एक कोई अच्छी चीज़ मुझे उससे बहरमंद फरमा। वो क्या है? हुदा सालेहिन, एक ऐसी हिदायत कि जिसके अंदर दुरुस्ती और सलाह ही सलाह हो। ज़रा सा भी उसके अंदर कोई कजी, ज़रा सी भी उसके अंदर कोई गलती, बिल्कुल सीधा एक ऐसा रास्ता हो कि जो एकदम हिदायत के ऊपर हो,
जिसके बाद इनहराफ का इम्कान ना हो।
इन्हराफ ना हो, ना खुद रास्ते में इन्हराफ हो, ना उसकी इंतहा में इन्हराफ हो। ला अस्तब्दिलु बिही, और इस रास्ते को किसी चीज़ से तब्दील ना करना। ये बहुत अहम दुआ, ये नहीं क्या तब्दील ना करना। देखें ऐन मुमकिन है, इंसान की जब आप ज़िंदगी को देखते हैं तो चार सूरतें यहाँ पर मुमकिन होती हैं उसकी ज़िंदगी में। एक सूरत ये मुमकिन है कि शुरू से आखिर ज़िंदगी तक ये इंसान सिराते मुस्तकीम पर ही ना रहे हमेशा से, यानी ये विलादत के बाद से जब से इसने होश संभाला, फासिद तरबियत की वजह से या मुख्तलिफ अवामिल की वजह से ये गलत रास्ते के ऊपर पड़ गया और ज़िंदगी के आखिर तक ये गलत रास्ते के ऊपर ही ला, जिसमें से जैसे अहले बैत अलैहिस्सलाम के अक्सर दुश्मन वो इसी कैटेगरी में आते हैं। एक इंसान वो है कि नहीं, ज़िंदगी के शुरुआत में तो ये बुरा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद मुताल ने उसकी हिदायत कर दी और आखिरी उम्र तक के फिर हिदायत के ऊपर बाकी रहा।
सही।
यानी जब इस दुनिया से जा रहा है तब हिदायत के साथ जा रहा है, लेकिन इससे पहले मुमकिन है कि वो हिदायत के रास्ते के ऊपर नहीं था।
ना रहो।
तीसरा एकदम इसका उल्टा आप कर दीजिए कि शुरू ज़िंदगी में तो ये सलाह के रास्ते के ऊपर था, लेकिन मरते टाइम खुदा ना खास्ता इसका रास्ता क्या हो गया,
कदम लड़खड़ा गए,
कदम
रास्ता बदल
लड़खड़ा
गए।
गए, रास्ता बदल गया, शैतान ने बहका लिया। बहुत सी रवायात के अंदर मौजूद है कि जब हालत एहतज़ार का वक्त होता है और इंसान एहतज़ार के वक्त पहुंचता है तो शैतान तरह तरह से उसको बहकाने की कोशिश करता है। अब अगर दुनिया से इसकी दिल लगी है, दुनिया की चाहत इसके दिल के अंदर है, तो इसका दिल तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत से लोगों को ये शैतान यहाँ के ऊपर बहका लेता है और उनके ईमान को आके छीन लेता है उनसे। चौथी सूरत यह है कि नहीं, शुरू से आखिर तक हिदायत के ही रास्ते के ऊपर हो। इन चार में से आप किसको कामयाब कहेंगे? भई आखिरी वाले कि जो शुरू से आखिर तक के सलाह के रास्ते के ऊपर रहे, हिदायत के रास्ते के ऊपर रहे, ये कामयाब है, या वो जो शुरू में तो मुश्किल में था, गलती पे था, लेकिन लास्ट में आके वो सुधर गया? इन दोनों के अंदर एक वजह मुश्तरक पाई जा रही है, वो क्या है कि इनका जो इनकी जो सरात मुस्तकीम है वो किसी चीज़ से आके तब्दील नहीं हो रही है। यानी क्या? यानी इंतहा तक के ये सरात मुस्तकीम पर ही जा रहे हैं,
यानी अंजाम दोनों का अच्छा है।
अंजाम दोनों का अच्छा है। यानी इमाम अलैहिस्सलाम एक अजीब तशबीह पेश करना चाह रहे हैं, कहा देखो तुम अगर मेरी ज़िंदगी को देखो, तुम अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखो, तो तुम्हें ये लगे, तुम्हें पता ये चलेगा कि उनकी ज़िंदगी शुरू से लेकर इंतहा तक के सरात मुस्तकीम के ऊपर रही है, बल्कि वो ऐन सरात मुस्तकीम है
नुक्ते अव्वल से नुक्ते आखिर
आखिर
तक
तक।
सिरात मुस्तकीम
अब हम
है।
चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी उनकी ज़िंदगी के साथ मुशाबहत हासिल करे, तो कह रहे अब यहाँ पर इंसान आके क्या करता है, परवरदिगार मेरे अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ की हैं, खताएँ की हैं, गुनाह किया है, अब किस तरह से मैं अपने आप को अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम से नज़दीक कर सकता हूँ? भाई जो मेरा गुज़श्ता ज़माना है उसमें तो मेरी ज़िंदगी और अहले बैत की ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो असल मुकायसा नहीं है, एक इधर जा रही है एक उधर है। तो यहाँ पर इंसान नाउम्मीदी का शिकार होने लगता है। इमाम कहना चाह रहे हैं नहीं रुको, अभी एक ऑप्शन बचा है,
अभी मौका मिल सकता
अभी
है।
एक खिड़की है जिसको तुम खोल के ताज़ी हवा वहाँ से आ सकती है, जिससे तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हो। वो क्या है? तुम अपनी ज़िंदगी के आगे वाले रास्ते के ऊपर गौर करो, जो आने वाला रास्ता है कि जिसकी शुरुआत अभी से होने वाली है। देखिए जिस ज़माने में हम खड़े हैं ये एक ज़माने की इंतहा और एक ज़माने की शुरुआत है,
सही
जो ज़माना चला गया उसकी इंतहा है, जो आने वाला उसकी शुरुआत है। ईमान करे तुम शुरुआत को देखो, ये दुआ करो परवरदिगार से कि परवरदिगार हमें एक ऐसे हिदायत के रास्ते के ऊपर लाके खड़ा कर दे कि किसी भी चीज़ से ये बदले मत, यानी कहीं पर भी इसके अंदर कजी, कहीं पर भी इसके अंदर झुकाव, कहीं पर भी इसके अंदर बहकाव, कुछ नहीं आना चाहिए। और अगर यही एक फ़िक्रा पूरी दुआ मकारमुल अखलाक में से कबूल हो जाए और खुदा बंद मुताल इंसान को ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दे, इससे बेहतर क्या है,
बेड़ा पार है।
बेड़ा पार है।
सही, कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकते हैं। एक अच्छी जगह पर गुफ्तगू हमारी हो रही है दुआ मकारमुल अखलाक के हवाले से, अहम तरीन गुफ्तगू। एक जुमला छोटा है लेकिन बहुत ही पुरमाना और बहुत ही अहम मसले पर, कि जिसका पू जिस जिस पर पूरी ज़िंदगी का दारो मदार है हमारी। एक तरह से अगर हम चाहते हैं कि बख़ैर व आफ़ियत हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो, वो ये कि अगर सीधा रास्ता हमें मिल जाए और आखिर तक उसी पर गामजन रहें, हमारी आकिबत संवर जाए, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं है।
जी आकिबत बखैर
यही
है।
हमारा मुतालबा होना भी चाहिए। और शायद यही वजह, जैसा कि आपने बताया, कि शैतान आखिरी वक्त पे ज़्यादा कोशिश करता है इंसान को ज़रा बहकाए, और कोशिश करता है कि कदम ज़रा मोमिन के लड़खड़ा जाएँ, और जिधर मोमिन जाना चाहता है उधर ना जाए, बल्कि उधर जाए जिधर शैतान ले जाना चाहता है। आखिरी वक्त पर उसकी कोशिश ज़्यादा होती है। कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकते हैं, इंशाल्लाह फिर या मुअती अल खैरात आतेना जमीअ खैर दुनिया वल आखिरा। इस वक्त हम बैठे ही हैं अल्लाह की बारगाह में और इस प्रोग्राम में कि अल्लाह से खैर तलब करें। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़बानी बहुत बड़ा खैर है, खैर कसीर है ये दुआ मकारिमुल अखलाक। हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि हमारे शामिल हाल उसको कर दे उस खैर को, कि जिसके बाद कोई नुकसान हमें उठाना नहीं पड़ेगा। यकीनन बात बीच में रोकी मैंने, और एक अहम बात है कि हम तलब कर रहे हैं ऐसी हिदायत कि जिसके बाद कजी ना हो, इनहराफ ना हो, कदम ना
जी
लड़खड़ाएं।
इसी की तफसीर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम आगे वाले फ़िक्रात में बयान करते हैं। हज़रत फरमाते हैं, व तरीक़त हक़ ला अज़ीग़ अनहा व नीयत रुश्द ला अशुक्कु फ़ीहा व अमिरनी मा कान उम्री बज़लतन फ़ी ताअतिक। ये दो तीन जुमले कि जिसका ज़ाहिरी तर्जुमा यह है कि परवरदिगार बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर हमें गामजन करना कि जिसके अंदर कोई हमें एक ऐसे रास्ते के ऊपर गामजन करना कि जिसमें कभी कोई मोड़ ना हो, हमें एक ऐसी पुख्ता नीयत दे जिसमें ज़रा से भी कोई शुभा ना हो, और जब तक मेरी ज़िंदगी तेरी इताअत और फरमाबरदारी के काम आए मुझे ज़िंदा रख। यहाँ पर आके फिर इमाम इस ज़िंदा रख का एक दूसरा रुख भी पेश करते हैं। यानी ये जो तीन चार जुमले इमाम ने फरमाया कि परवरदिगारा सिरात मुस्तकीम पर हमें गामजन रखना, हक़ के रास्ते के ऊपर हमें गामजन रखना, हमें एक ऐसा यकीन देना कि जिसके अंदर कभी कोई शक ना आए, और जब तक कि मेरी ज़िंदगी तेरी इताअत तेरी बंदगी में गुजर रही है मुझे ज़िंदा रखना। जब जुमला यहाँ पर पहुँचता है तो आपके जहन में शेख सवाल आएगा, अच्छा इसका मतलब यह है कि अगर मेरी ज़िंदगी परवरदिगार की इताअत में नहीं गुजर रही है तो मेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना। भाई इमाम क्या कह रहे हैं कि मुझे जब तक शर्त के साथ, आप मसलन किसी से आप कहेंगे भाई मैं उस वक्त तक आपका एहतराम करूंगा जब तक कि आप खुदावंद मुताल की मासियत नहीं
ना करें।
करेंगे, या उस वक्त तक माँ बाप की इताअत वाजिब है जब तक कि वो खुदावंद मुताल की नाफरमानी का हुक्म
ना दें।
न दें। इसी तरह इमाम यहाँ पर फरमा रहे हैं कि परवरदिगारा जब तक मैं तेरी इताअत में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, जब तक मेरी सांस तेरी इताअत में चल रही है तब तक मेरी जिंदगी को तू बाकी रखना। तो इसका मतलब यह है कि अगर इताअत इलाही में हमारी सांस नहीं चल रही तो जिंदगी खत्म हो जाए। बाद वाला जुमला इसी जुमले का दूसरा रुख है, यानी सिक्के का एक रुख यह है, सिक्के का दूसरा रुख जो इमाम फरमा रहे हैं वो ये है, फ़ाइज़ा कान उम्री मरतअन लिश्शैतान। देखिए मरता, मरता अरबी में कहते हैं चरागाह को, जहाँ
सही
जानवर को ले जाकर छोड़ दिया जाता है और वो बिल्कुल आज़ाद होके जो है वो अपना पेट भरता है। अगर परवरदिगारा मेरी ज़िंदगी शैतान के लिए चरागाह बन गई, यानी मेरी ज़िंदगी ऐसी बन गई कि जब शैतान का दिल चाहता है आता है, उसमें से जो हिस्सा चाहता है उठा के लेके चला जाता है,
सही
आपने देखा होगा जो वसी मैदान होता है उसमें कोई सब्जा उगा हुआ है, घास उगी हुई है पूरे मैदान में, आपने जानवर को छोड़ दिया, तो जानवर एक जगह रुक के नहीं खाता है, टहलता रहेगा, यहाँ मुंह मार दिया, वहां मुंह मार दिया, वहां मुंह मार दिया। कोई उसमें ये नहीं होता है कि भाई इंसानों की तरह थोड़ी है, भाई आपको एक प्लेट में खाना दे दिया गया तो आप उसी में खाएंगे हर एक के, आप दूसरी प्लेट में थोड़ी हाथ बढ़ाते हैं, नहीं, जानवर है। नहीं, एक अजीब तशबीह है कि शैतान को तशबीह किया है किससे इमाम ने यहाँ पर, जानवर से,
हैवान से।
हैवान से, और हमारी जिंदगी को तशबीह किया है किससे, उस मर्था से, उस जगह से ही जहाँ
उस
पर
चरागाह से,
चरागाह से।
चरागाह से।
अब इमाम कह रहे हैं अगर ऐसा है फकबिजनी इलाइक, मुझे अपनी तरफ बुला ले,
जब तक तू देख रहा है कि मैं तेरी इताअत के दायरे में हूँ, ठीक है, मुझे ज़िंदा रख। लेकिन जैसे ही तू देख रहा है कि मेरी ज़िंदगी चरागाह बनती चली जा रही है शैतान के लिए, मुझे फ़ौरन उठा ले।
अब देखिए अगर इंसान इस जुमले के ऊपर एक मिनट रुके और ये सोचे कि यानी जैसे यानी और चाहे सिदके दिल से चाहे कि ये दुआ कबूल हो जाए, कोई मजाक की बात नहीं है, यानी दिल से वो ये दुआ मांगे परवरदिगार, देखिए बस औकात तो हम जब ये दुआएं पढ़ते हैं हमें पता नहीं होता इसमें है क्या, भाई अरबी से,
तबरुकन पढ़ते
भाई
हैं।
अरबी से वाकिफ नहीं है, वह जुमला है इमाम ने पढ़ी हम भी पढ़ते चले जा रहे हैं, अच्छी बात है। फिर हम दुआ ये भी करते हैं परवरदिगार जो इमाम ने मांगा है वो भी हम मांग रहे हैं, तो ठीक है इमाम ने ये मांगा है, इमाम ने ये मांगा है कि अगर हमारी जिंदगी सरात मुस्तकीम से हटके शैतान के हवाले हो रही है तो परवरदिगारा तू हमारी जिंदगी में तू हमारी रूह को कब्ज कर ले, फकबिजनी इलाइक। अब कितने लोग इसके लिए तैयार होंगे,
जिगर थाम के बैठना पड़ेगा जरा कुछ
भाई उनसे कहेंगे देखिए बहुत
देर।
आसान है, यानी आपकी कामयाबी का राज ये है कि आप जैसे ही गुनाह करने चलेंगे खुदा अपनी तरफ बुला लेगा, इसका मतलब आप कामयाब हो गए, खुद यही सोच इंसान को गुनाह से रोक देगी,
सही, बेशक।
बल्कि उसको अपनी दुआ के ऊपर यकीन है कि मैंने परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ की है, और अगर ये कदम गलत उठा तो उधर से जो है कोई लब्बैक कहता हुआ आ सकता है, यानी इधर से हमारा गुनाह आगे अगर कदम बढ़ा तो उधर से एक कदम और भी आगे बढ़ सकता है। और मैं बाज़ औक़ात कहता हूँ मजाक में कि भाई देखिए एहतराम से नाम लेना चाहिए
सही,
जनाबे मलकुल मौत का, तो ये
बुरा ना लग जाए
हाँ
कहीं।
नहीं ये दुआएं ऐसी कि हमें एक मरतबा के सोचें, मजाक नहीं है, ऐसे इंसान की दुआ है कि जैसे कि अभी आपने अशार में अर्ज किया कि पत्थर जिसकी इमामत की गवाही दे रहा है, आम इंसान की बात नहीं हो रही है। अगर हम चाह रहे हैं कि अपने आप को अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत के ऊपर ढालें तो हमें कम से कम सोचना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है, अगर तौबा कर रहे हैं फिर गुनाह कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं फिर गुनाह कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं फिर गुनाह कर रहे हैं, इसका मतलब ये दुआ हमारी हमारी कबूल नहीं हुई है।
अच्छा, तो इस दुआ का मरहला या इस दुआ की नौबत उस वक्त आती है जब हम पहले मरहले से, जो हम आपने जिसकी तरफ अभी इशारा किया कि गुनाह है फिर तौबा है, गुनाह है इस्तग़फ़ार है, गुनाह है इस्तग़फ़ार है, उस मरहले से निकलकर ऊपर आ जाएं तब इस दुआ
जी,
की बात आती है।
और इससे पहले जो मतालिब इमाम ने बयान किए बहरहाल वो
सही,
अपनी जगह के ऊपर, कबल अन यसबिका मख्तुका इलैही, परवरदिगारा क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान है, वो नुकसान ही है कि अगर शैतान ने मेरी जिंदगी को आपने कहा कि अपनी चरागाह बना लिया और हमें मौत नहीं आई तो क्या होगा, तू मुझसे नाराज हो
तू मुझसे
जाएगा।
नाराज़ हो गया। मैं कुछ देर के लिए आपको रोकता हूँ यहाँ पर, वक्त हो चला एक ब्रेक का, एक ब्रेक के बाद आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, मशाल अभी जारी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। 3 मिनट का वक्त हमारे पास है।
बहरहाल कुछ और जुमले हैं इमाम के जो अलबत्ता हर जुमला इमाम का अहम है, लेकिन एक जो हमारी ज़िंदगी से जिसका साथ ज़्यादा रब्त है वो ये है कि उसके बाद वाले फ़िक्रे में हमारे नाज़रीन देखेंगे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले व अब्दिलनी मिन बिग़्ज़त अहलि शनआनिल महब्बा, इसी के इदामे में इमाम आके ये फरमाते हैं कि परवरदिगारा एक चीज़ से मुझे बचा के रखना, वो क़त्अ रहम और आक़िब वालिदैन, यानी मकारिमुल अखलाक की का एक तकाजा ये होता है कि इंसान सिले रहम करता है और खुदावंद मुताल से दुआ करता है कि कहीं उन लोगों में इसका नाम शुमार न किया जाए जिन लोगों का नाम कत रहम करने वालों में से होता है। बहरहाल जिंदगी की मसरूफियात, जिंदगी की मशगूलियात, देखें एक अजीब माहौल बनता चला जा रहा है, राबिता ایجاد کرنا ایک دوسرے کے ساتھ بہت آسان ہوتا چلا جا رہا ہے. بھائی پہلے زمانے میں اگر آپ سفر کے اوپر جاتے تھے تو آپ جب تک کہ خود سفر سے واپس نہ آئیں یا کوئی آپ کو راستے میں مل نہ جائے آپ کے گھر والوں کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ بھائی فلاں صاحب گئے ہیں سفر کے اوپر, زندہ آئیں گے نہیں آئیں گے کیا ہوگا. آج آپ منٹ منٹ سیکنڈ سیکنڈ کے اپنی خبر جو ہے دوسروں تک بھیج سکتے ہیں. آپ کچھ بھی نہ کریں پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اس وقت دنیا میں کس جگہ کے اوپر ہیں, کہاں رہ رہے ہیں, کیا ہے. تو ایک دوسرے سے رابطے کے ذرائع کیا ہیں, بڑھ رہے ہیں, لیکن ایک دوسرے کے بارے میں خبریں کم ہوتی جا رہی ہیں.
عجیب المیہ ہے, سوچنے کی بات ہے.
صلہ رحم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل اٹھ کے ضروری جائیں اور ملیں, گرچہ یہ ہونا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. پھر ہم نے ملاقات کے اندر آ کے اتنے تکلفات رکھ دیے ہیں کہ اب اگر آپ کسی گھر پہ چلے جائیے تو یہ بھی ہونا چاہیے, وہ بھی ہونا چاہیے. اب سامنے والا یہی سوچ کے نہیں جا پاتا کہ بھائی اگر جائیں گے تو سامنے والا اتنی زحمت میں پڑ جائے گا. بھائی اصل مقصد یہ ہے ملاقات کرنا, اصل مقصد یہ کہ صلہ رحم پورا ہونا, ایک دوسرے سے باخبر ہونا کہ بھائی اگر کوئی مشکل ہے تو ہمیں پتہ چلے, اگر کوئی اچھی بات ہے تو ہم آپ کو بتا دیں. اگر یہ ہمارے تکلفات, اگر یہ ہماری مشغولیات اس کو روک رہی ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ہم مستحب کام کو ایک حرام کے ذریعے سے روکے دے رہے ہیں.
بہت خوب مولانا علی عباس صاحب, یہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں جاری رہے گا, یہاں پر ہماری بات رکتی ہے, اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. ناظرین میں آپ کا شکر گزار ہوں, آج بھی آپ ساتھ دینے کے لیے بیٹھے ہمارا. بہرحال اس میں کوشش ہوتی ہے کہ بہرحال ایک شوق, ایک اشتیاق ایجاد کیا جائے خود اپنے اندر اور ناظرین کے اندر, کہ ایک مرتبہ اٹھا کر دیکھیں یہ دعا ہے کیا, یا اس طرح کی اور جو دعائیں ہیں اس صحیفے میں اس کو دیکھیں پڑھیں, کچھ حاصل ہو ہمیں. اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے, دعا چھوٹی ضرور ہے لیکن بشریت کی سب سے بڑی آرزو, اللہم عجل لولیک الفرج. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیں, خدا حافظ.